किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आज सुनिए प्रसिद्ध अमरीकी साहित्यकार और लघु कथाओं के जादूगर माने जाने वाले ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ का हिंदी अनुवाद आखिरी पत्ती। वाचन है निधि बासु का। वॉशिंगटन स्क्वायर के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसकी टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई हैं। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता दो तीन बार काट जाती है। इस सड़क के संबंध में एक कलाकार के मन में एक अमूल्य संभावना पैदा हुई कि कागज, रंग और कैनवस का कोई व्यापारी यदि किसी कलाकार से अपना पैसा वसूल करने यहाँ आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से ही मुठभेड़ हो जाएगी और उसे एक भी पैसा बिना वसूल किए ही लौटना पड़ेगा। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनिच विलेज नाम के मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर एकत्रित होने लगे। वे सब के सब उत्तर दिशा वाली खिड़कियां, 18वीं सदी की मेहराबें, छत के कमरे और सस्ते किरायों की तलाश में थे। बस 6th एवेन्यू से कांसे और टीन के कुछ बर्तन खरीद लिए और एक कॉलोनी बसा ली। एक नीचे से मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी यानी जोआना एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8th एवेन्यू के एक साधारण से रेस्टोरेंट में हुई थी। दोनों की आर्ट और खाने पहनने की पसंद में इतनी समानता थी कि दोनों के मिले जुले स्टूडियो का जन्म हो गया। ये बात मई के महीने की थी। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डाल अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने बीसियों लोगों की बलि लेकर तहलका ही मचा दिया था, परंतु पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस भीमकाय फुफकारते दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था, फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वो बेचारी चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने की ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मोमीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना 10 में 1 है, और वो भी तब यदि उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती और वे मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनका इलाज धन्वंतरी भी नहीं कर सकते। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि वो अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है?
और तो कुछ नहीं, पर हाँ, किसी रोज बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाने की उसकी प्रबल इच्छा है।
पेंटिंग? मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है कि जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो, जैसे कोई नौजवान?
बिच्छू के डंक की सी चुभती आवाज में सू बोली,
नौजवान, पुरुष और प्रेम, छोड़ो भी।
नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है।
खैर, बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ भी मुझसे मुमकिन है उसे किए बिना नहीं छोड़ूंगा, पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है ना, तब दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है। पर हाँ, अगर तुम उसके जीवन में
कुछ ऐसा कर सको जिससे वो सर्दियों के नए स्टाइल के बारे में एक भी सवाल करे, तो उसके जीने की संभावना कम से कम दूनी हो जाएगी।
डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने काबिल कर दिए। कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वो सीटी बजाती हुई जोंसी के कमरे में पहुंची। जोंसी चद्दर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देखती पड़ी थी। उसे सोई हुई जानकर सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया।
तख्ते पर कागज लगाकर वो किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। नए कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं। जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नए लेखकों को पत्रिकाओं की कहानियां लिखनी पड़ती हैं।
जो ही सू एक घुड़सवार वाले ब्रीचेस पहने आइडाहो के काउबॉय के चित्र की रेखाएं बनाने लगी, उसे एक धीमी आवाज अनेक बार दोहराती सी सुनाई दी। वो शीघ्र ही बीमार के बिस्तरे के पास गई।
जोंसी की आंखें खुली थीं। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वो उल्टी गिनती गिन रही थी।
12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने उत्सुकता से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार? एक पुरानी ऐंठी हुई जड़े निकली हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। ठंडे मौसम ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ ली थीं और उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उघाड़ी उन टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थी। सू ने पूछा, क्या देख रही हो जोंसी?
अब वे जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहां करीब 100 थी। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। वो एक और गिरी, अब बची सिर्फ 5।
5? 5 क्या जोंसी? अपनी सू को तो बता।
पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया?
बहुत तिरस्कार के साथ सू ने शिकायत की। ओह, इतनी ना समझ तो कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने से इन पत्तियों का क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार करती थी, इसीलिए ना? बदमाश लड़की, अपनी बेवकूफी बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया था कि तेरे जल्दी से ठीक होने की संभावना, किन शब्दों में कहा था? हाँ, कहा था संभावना 10 में 9 है। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं, तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं रहती। अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे, ताकि उसे संपादक महोदय के हाथों बेचकर वो अपनी बीमार बच्ची के लिए थोड़ी दवा दारू और अपने खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके।
अपनी आंखें खिड़की के बाहर टिकाए जोंसी बोली,
तुम्हें अब मेरे लिए दवा दारू लाने की जरूरत नहीं। वो एक और गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की भी जरूरत नहीं। अब सिर्फ 4 रह गई हैं, अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूं, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी।
सू
उस पर झुकती हुई बोली, प्यारी जोंसी, तुझे शपथ लेनी होगी कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम करती हूँ खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। कल तक ये तस्वीरें पहुंचा देनी है, मुझे रोशनी की जरूरत है, वरना अभी खिड़की बंद कर देती। जोंसी ने रूखे स्वर में कहा,
क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीरें नहीं बना सकती?
मुझे तेरे पास ही रहना है, इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने देना नहीं चाहती।
किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद अपनी आंखें बंद करती हुई जोंसी बोली,
काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। बाट जोते जोते हैरान हो गई हूँ, सोचते सोचते थक गई हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ और उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे 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 चली जाना चाहती हूँ।
तू सोने की कोशिश कर, मैं खान के मजदूर का मॉडल बनने के लिए उस बेयरमैन को बुलाकर लाती हूँ। अभी एक मिनट में आई, जब तक मैं नहीं लौटूं तू हिलना मत। बूढ़ा बेयरमैन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था, वो भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी जिन्न के सिर से किसी भूत के शरीर तक लहराती भी मालूम पड़ती थी। बेयरमैन एक असफल कलाकार था, 40 वर्षों से वो साधना कर रहा था लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सका था। वो हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता कि ये उसका मास्टरपीस होगी, पर कभी भी वैसी बना नहीं पाता। इधर कई वर्षों से उसने व्यवसाय क्या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय आर्ट को छोड़ ही दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बन जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे, वो आजकल अपना पेट भरता था। वो जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपने उस मास्टरपीस के विषय में बकवास करता जिसके सपने वो संजोता था। वैसे वो बड़ा खूंखार बूढ़ा था जो नम्र आदमियों का जोरदार मजाक उड़ाता और अपने को इन दोनों जवान कलाकारों का पहरेदार कुत्ता समझा करता। सू ने बेयरमैन को अपने अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। उससे जामुन की गुठलियों सी गंध आ रही थी। एक कोने में वो कोरा कैनवस खड़ा था जो उसके मास्टरपीस की पहली रेखा का अंकन पाने की 25 वर्षों से बाट जो रहा था। उसने बेयरमैन को बताया कि कैसे जोंसी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी पकड़ संसार पर से ढीली हो जाएगी। बूढ़े बेयरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर अपना तिरस्कार व्यक्त किया।
क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी जोंसी,
वो बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है और बुखार के कारण ही उसके दिमाग में ऐसी अजीब अजीब कल्पनाएं जाग उठी हैं। अच्छा बूढ़े बेयरमैन, अगर तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो, हो तो आखिर सठी आया हुआ बुढ़ा। बेयरमैन चिल्लाया,
तू तो लड़की की लड़की ही रही, किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, आधे घंटे से यही तो झीक रहा हूँ कि भाई चलता हूँ चलता हूँ।
लेकिन एक बात कहूं, ये जगह ना जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपना मास्टरपीस बना लूंगा तब हम लोग यहां से चले चलेंगे, समझी? हाँ।
जब वो लोग ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बेयरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने भयभीत दृष्टि से खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक केतली को उल्टाकर उस पर नीले कमीज में बेयरमैन को बैठाया गया, जिससे वो चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। कुल एक घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आंख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़ कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया,
पर्दा उठा दे, मैं देखना चाहती हूं।
विवश होकर सू को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन ये क्या, रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती अभी भी टिकी हुई थी। उस बेल की वो आखिरी पत्ती थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास पकने और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वो पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंची अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी।
यही आखिरी है, मैंने सोचा था कि रात में जरूर ही गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी।
तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली,
क्या कहती है पागल, अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल कर, मैं क्या करूंगी?
पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु ये आत्मा है। जब वो अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है, ज्यों ज्यों संसार और मित्रता से बांधने वाले जॉन्सी के बंधन ढीले पड़ते गए, त्यों त्यों उसकी कल्पना ने उसे और अधिक जोर से जकड़ना शुरू कर दिया। दिन बीत गया और संध्या के क्षीण प्रकाश में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वो पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। पर तभी रात पड़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगी और वर्षा की झड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह आईं। रोशनी होते ही निर्दय जॉन्सी ने आदेश दिया कि पर्दा उठा दिया जाए। बेल में पत्ती अभी भी मौजूद थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसी को एक टक देखती रही। उसने सू को पुकारा जो चौके में स्टोव पर शोरवा बना रही थी।
सूडी, मैं बहुत ही खराब लड़की हूं। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे ये बता दिया है कि मैं कितनी दुष्ट हूं। इस तरह मरना तो पाप है। ला, मुझे थोड़ा सा शोरबा दे और कुछ दूध में शहद मिलाकर ला दे। पर नहीं, उससे पहले मुझे जरा शीशा दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा ताकि मैं बैठे बैठे
तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं।
कोई एक घंटे बाद वो बोली,
सुडी, मुझे आशा है कि मैं कभी ना कभी बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग जरूर बनाऊंगी।
शाम को डॉक्टर साहब फिर आए और सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल कांपते हाथ को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावना 10 में से 5 मानी जा सकती है। अगर देखभाल अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगी। और अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूं।
क्या नाम है उसका?
बेयरमैन। शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है। बहुत दुर्बल और बूढ़ा आदमी है और झपट जोर की लगी है। बचने की कोई संभावना नहीं। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहां आराम ज्यादा मिलेगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे के बाहर है, तुम्हारी जीत हुई। अब तो सिर्फ खाना पीना और देखभाल की जरूरत है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। जॉन्सी नीले ऊन का एक बेकार सा गुलबंद निश्चिंत होकर बुन रही थी। उसने तकिए के उस ओर से अपनी बांह सू के गले में डाल दी। सू बोली,
ओ मेरी भोली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेयरमैन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 2 रोज बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहां तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे हुए और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। ये तो कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहां गया था। लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक सीढ़ी, 2-4 ब्रश और कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वो पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारी सहेली, यही बेयरमैन की मास्टरपीस थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात को उसने उसे पेंट किया था।
आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ का हिंदी अनुवाद आखिरी पत्ती। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।